हरे कृष्ण सन भक्तों का स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सप्तम स्कंद अध्याय है, नवा अध्याय, और अध्याय का शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। बहुत लंबा, प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। अंग्रेजी में प्रहलाद पैसिफाइज द लॉर्ड विद प्रेयर्स, क्योंकि वाक्य यहाँ तक आ गया है कि फाइनली हिरण्यकशिपु का खात्मा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब जो है भगवान वहां पर, नरसिंह देव वहां पर प्रकट है, विराजमान है, और प्रहलाद महाराज जो है उनकी वहां पर स्तुति कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे कैसे है, क्या है इसका पूरा। 34वां श्लोक बोर्ड पे है अभी, है अभी और भी चलेगा, काफी लंबी प्रार्थना है। 55-56 तक आएगी, हाँ 55 तक, 50 तक श्लोक है उनका, तो अभी चलेगा। तत्संभव करे अतयन्या तपस्यमानः बीजम आत्मने ददम सपहिर्विचिन्त्य नाविन्दनब्दशतम् अक्षूणि मज्जमानः जातेन कुरे कथम् उपोन्नवभेतम् बीजम्। धन्यवाद। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे, शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद सुनिए। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उनके उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा, अतः आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्ष तक उस कमल के उद्गम को खोजने का प्रयास करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नहीं दिख पाता। ठीक है, सो तात्पर्य इसका तो अपने आप में, श्लोक अपने आप में क्लियर है। यह विराट जगत का वर्णन है। क्या विराट जगत, यानी कि पूरा जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो सृष्टि जैसे हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, सृष्टि का मतलब यहां सिर्फ भौतिक सृष्टि नहीं है, सृष्टि का मतलब पूरी सृष्टि। इस जगत का विकास बीज के फलीभूत होने के समान, जब रुई से धागे बन जाते हैं तो रुई नहीं दिखता, और जब धागों से कपड़ा बन जाता है तो धागा नहीं दिखता। इसी प्रकार यह कथन बिल्कुल सही है कि जब गर्भदक्षिणी विष्णु के नाभि से उत्पन्न बीज विराट विश्व के रूप में प्रकट हो गया, तो कोई यह नहीं समझ सकता था कि इस विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या है, क्योंकि वो बीज रह नहीं जाता। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने सृष्टि के उद्गम की विवेचना पिंड सिद्धांत, चंक थ्योरी, एक मिट्टी का ठेला ऐसा समझ लीजिए, से करने का प्रयास किया है, लेकिन यह कोई नहीं बता सकता कि ऐसा पिंड किस प्रकार फटा होगा। किंतु वैदिक वाणमय का मतलब होता है लिटरेचर, किताबें, ओके, स्पष्ट बताता है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति परमेश्वर की चितवन से प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्तेजित हुई। दूसरे शब्दों में पिंड सिद्धांत के अनुसार पेट का फटना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया गया, अतः मनुष्यों को चाहिए कि परम कारण विष्णु को समस्त कारणों का कारण स्वीकार कर ले। तो बेसिक सृष्टि की बात हो रही है, ये अभी जो आपका चल रहा है, ये 32वां, ये तो 34वां है, 37 तक जो है यही चलेगा, यही टॉपिक। जैसे एक होता है अध्याय का शीर्षक, है ना, ये तो सबको मालूम है, चैप्टर नंबर होता है, ये श्लोकों का भी हेडलाइन होता है, श्लोकों के भी हेडिंग्स है भागवतम में। आइडिया है कहां पे है, चैप्टर के अंदर जब शुरुआत होती है तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर इस श्लोकों की एंडिंग है, अक्सर नहीं पता होता क्योंकि वो तो पढ़ते ही नहीं, वो आगे चले जाते, बट वो श्लोकों की एंडिंग है। तो ये सात श्लोक, और समाव हिंदी में मैंने देखा है, हिंदी में पेज नंबर नहीं है कि पता चल जाए कि भैया कौन सा श्लोक कौन सा एंडिंग का हिस्सा, पर अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो पेज नंबर दिए हुए कि फला पेज से फला पेज के बीच में जो है दरमियान जो है ये हेडिंग है, ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो इस तरीके से। तो वो जो हेडिंग है वो है भगवान विष्णु की योग निद्रा, तभी बेसिकली ये चर्चा हो रही है। तो छह श्लोकों में जो है पांच छह श्लोकों में ये चर्चा होगी और फिर आगे निकलेंगे। जैसे यहां पर अभी ये प्रहलाद महाराज चर्चा करते, शुरुआत में ये बात आती प्रहलाद महाराज, तो यार महाराज तो थे नहीं, जहां से प्रहलाद राजकुमार थे, देखो दिमाग में आया कि ये प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज महाराज तो है मजबूत किधर से महाराज आ गए, कौन सा महाराज, तो बाद में बताया ना। हाँ वो महाराज वो वाले महाराज नहीं, महारानी वाले महाराज, ये गोस्वामी वाले महाराज है। अब आप बता रहे हैं बारह महाजनों में से भी प्रहलाद इज द बेस्ट, और छोटा सा बच्चा है सबका बाप निकला हो इसलिए महाराज, और किसी के लिए इस तरीके से महाराज है, समाज को महाराज नहीं था, अम्बरीश महाराज महाराज थे, ठीक है, तो इसलिए महाराज इस्तेमाल हो रहा। और बताएं किसके लिए महाराज इस्तेमाल हुआ, भीष्मदेव के लिए महाराज इस्तेमाल हुआ है, कपिल के लिए महाराज इस्तेमाल हुआ है, यमराज जल के लिए इस्तेमाल, बाली तो महाराज थे ना, वो तो पैदाइश ही महाराज थे, यही बात हो रही है, और कोई किसी के लिए महाराज नहीं इस्तेमाल हुआ, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ ऑल द 12 महाराज, जो है उनको सबसे ऊंचा दर्जा मिला है, इसलिए महाराज कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इसलिए महाराज, वो पांच साल के बच्चे थे, वो महाराज क्या होता है समझे, आज के डेट में के हिसाब से उसको क्या कहेंगे, जुवेनाइल नाबालिग, नाबालिग महाराज थे नहीं, बस इसलिए प्रहलाद महाराज, हर जगह प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज से मानो। और जब हम प्रहलाद महाराज के बाद अब चलो ये भी ले लेते, चलो महाराज थे, अब मेरे बात समझ रहे, जो प्रहलाद महाराज महाराज बने, प्रहलाद महाराज कैसे दिखते थे वैसे डील डॉल में कैसे दिखते थे बच्चे, तो महाराज बच्चा कैसे हो सकता है, वो जब महाराज थे तो बच्चे थे नहीं समझ रहे, ये स्टीरियोटाइप्स है हमारे दिमाग के अंदर, प्रहलाद महाराज भाई बलि महाराज के दादाजी थे, आपको क्या लगते बच्चे थे बड़े हो चुके थे यार, हमारे नजरों में बच्चे रह गए वो, और माफ करो उनको यार बड़े होने दो तो प्रहलाद महाराज इस महाराज, जब वो महाराज वाकई हो गए महाराज, जिस महाराज की आप महाराज लफ्ज से जो चीज आप समझते हैं, तब वो बच्चे वाले महाराज नहीं रह गए थे, तो बड़े बच्चे थे, और जिस टाइम तक उनको महाराज महाराज कह रहे थे वो बच्चे थे, प्रहलाद महाराज चलिए आगे चलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर वो प्रहलाद महाराज अब ये स्तुति कर रहे हैं, तो अब स्तुति में शुरुआती तौर पर जब उन्होंने शुरू किया तो शुरू कैसे किया, शुरू में तो इन्होंने ये बताना शुरू किया कि भगवान की भक्ति कितनी महान है, फिर उसके बाद बताया कि भगवान की ओर करित होते हैं, फिर ये भी बताया कि इस दुनिया में जो है जो सुख है वो उसकी औकात क्या है बेसिकली, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे कर्तव्य बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें बेसिकली, तो फिर आ गया ये सृष्टि। तो अब बात ये आती कि बीच में जब हम किसी की स्तुति करते हैं, ठीक है ना, तो जब किसी की स्तुति करते हैं तो स्तुति ऐसी होती है जैसे मिसाल के तौर पर ले लें, मैं सर्वज ऋषिकेश की स्तुति करता हूँ, मैं क्या करूँ कि आप क्या कहते हैं, आपने इंजीनियरिंग करी, आपने मंदिर में सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करा, तो भाई अचानक ही सृष्टि और ये ब्रह्मा जी और ये बीज और बीज से धमाका होना और ये सब, ये स्तुति का हिस्सा डिटूर हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे उच्चारण स्तुति करते हुए। ये स्तुति का हिस्सा कहां से है कि भाई जगत बन रहा है, समझ आ रही है? वैसे ही पल्लवी पड़ती ये सब्जेक्ट्स कि कैसे ना एक एक तत्व से दूसरा तत्व निकलता है, वो बढ़ता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मकसद क्या, ये क्यों है ऐसा? बात यूं है कि इवन भागवतम में कई चैप्टर्स, कई कैंटोज ऐसे आते हैं जहां पर भागवत भी हाथ जोड़ रहे तो बोलता है बस ये अब जो है दिमाग फटने वाला है, जल्दी से निकालो इनको, है ना। जैसे फिफ्थ कैंटो है जहां पर यूनिवर्सल क्रिएशन, थर्ड कैंटो में पार्ट्स आते हैं इसके, सेकंड कैंटो में थोड़ा सा हिस्सा आता है, ठीक है। अभी जैसे यहां पर हर कैंटो में कुछ ना कुछ सृष्टि के बारे में आई जाते हैं, और जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सीधी बात रूखा लग रहा होता है, जो लग रहा होता है, लग रहा होता है जो है। अब बात यह कि फिर ये सब बातों का क्या लेना देना। हम जो है, हमें तो ये बताया जा रहा है ना कि हम, या हम जैसा समझते हैं, बताया ना, पता नहीं क्या जा रहा है, पर समझते जो हम हैं, ये हमें तो इस दुनिया से निकलना है कि नहीं? तो जहां से आपने निकलना है वो कैसे बना, कैसे चलता है, क्या उसकी गति होनी है, हमने क्या करना उसका? तो कोई कभी कभी मतलब इस चीज को थोड़ा कभी इस गौर किया हो कभी इस चीज को इस नजरिए से, क्या जरूरत है ये सब इतनी बकवास जो है, और ये समझ भी नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये भी, और जब डिस्क्रिप्शन आती है उस टाइम की कि भाई दुनिया ऐसा है, एक पहाड़ी है जो नीचे से नुकीली है, ऊपर से चौड़ा है, ठीक। अच्छा, नदियां बहती हैं दूध की, शहद की, शराब की, हर चीज की। तो यार मतलब क्या करें इसका, सिर पे मारे क्या करें इसका, क्यों है, ठीक है। ये पढ़ पढ़ के आदमी नहीं पागल हो जाता है, तो मतलब क्यों जरूरत है इसकी, क्यों लिखी है इसको? ये इसलिए लिखी है कि हमारे भेजे में समझाने के लिए, ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए कि इस दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तीन बुनियादों पर टिकी है, जीव, ईश्वर और माया, यानी दुनिया। ओ भाई, आप जहां पर रहते हो उसका आपको अता पता कोई नहीं, इधर रह के जब आप उधर की बात करोगे तो आप यकीन जानिए उधर जाके इधर की बात करेंगे। फिर जहां पर आप हो, जो आपकी जगह है, जो आपका स्थान है, जो आपका क्षेत्र है, इसको जाने बिना, इसको समझे बिना आप यहां से नामुमकिन निकल लो, नामुमकिन। ये दुनिया बनाई जब भगवान ने, तो वो बनाई इसलिए कि इसको आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें यहां से निकलने के लिए। तो पहले पता तो हो वो चीज बनी कैसे है, तब इस्तेमाल करेंगे। जिसका अब भाई, अब जैसे ये है माइक्रोफोन है, ये है, चलिए मैंने तो ना ये बनाई है ना मैंने ये बनाई है, पर जब मेरे पास इसका हैंडबुक आता है, मैनुअल आता है, उसमें होता है बुनियादी चीज बताई होती है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल क्या है, तब जाके आप आगे कर, नहीं तो इसका कोई फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो इस वजह से इतना इन चीजों पर इतना वो चलता है बार 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 की दुनिया बनाई गई, ऐसे बनाई गई, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ताकि इसका इस्तेमाल हम कर सके। एक्टिव जो देखिए, अक्सर इस काम के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, आपने सुना होगा, सुन सुन के कई बार कान भी पक जाते हैं। एक होता है प्योरिटी इज द, अच्छा, दूसरा होता है प्रीचिंग इज द, तीसरा होता है बुक्स आर द, और चौथा क्या होता है, ये तो सुनाई नहीं देता, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ये क्या बोला है, उपयोगिता ही सिद्धांत है। यानी जो चीज आपको मिली है, जो आपको भगवान ने दी है, उसका तो इस्तेमाल करें ना पहले, तो वो चीज देंगे जो अभी आपके पास नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया देने के बाद इसका आपको इस्तेमाल ही कोई नहीं, फिर आपने क्या करना है, और ऊपर और भी कुछ मिल भी जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? इसके अलावा की कोई चीज मिल भी जाएगी तो ट्रैक तो ये है हमारा, कि जो मिला है उसका इस्तेमाल, उसको हमने उल्टा, वो उसको हम ऑब्स्टेकल देख रहे हैं। इस दुनिया को हम अपने और भगवान के बीच में ऑब्स्टेकल देख रहे हैं, जो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए दी गई है, उसका इस्तेमाल करके हम निकले। तो फिर कैसे, जो यानी कि जो औजार आपके इस्तेमाल के लिए दिया गया है, अगर आप औजार से ही बैर कर लेंगे तो फिर सामान बनाने को तो नौबत ही नहीं आएगी। जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप यहां से निकलेंगे, आपको उस सीढ़ी से ही अगर आपने दुश्मनी पैदा कर ली है, उसी से आपको घिन आ गई है, तो फिर तो ला मालिक। समझ आ रही बात? शायद किसी को शायद झटका लगा हुआ, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भगवान ने जो बनाई है, ये भगवान, अच्छा ये मायावादी जो हम कई बार सुनते ना, मायावादी को वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या है, ठीक है ना। और भाई ये भगवान ने ये सृष्टि करी है, ये भगवान की और भी लव जैसी, वो भी लीला है, वो बैठे मेहनत करिए, मेहनत करके बनाई वो चीज, और ये यही पढ़ रहे हैं कैसे मेहनत करिए। तो जब आप इसको माया कह देंगे, ये झूठा है, तो फिर भगवान झूठे। तो वो अगर ऐसा कह रहे हैं उस पर हम हंस रहे हैं, पर जब हम भी इसको ऐसे ही देखते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज नहीं है। जय श्री राधा रिगम भगवान की जय, कृष्ण राम की जय, गोविंदा की जय, जगन्नाथ प्रदेश की जय। तो हमें और उनमें क्या फर्क है? फर्क हमें उनमें क्या फर्क? वो भी यही कहते हैं, वो तो वो खुला कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, और हम जो है थोड़े दबे लफ्जों में कहते हैं कि ये जगत बेकार है, ये मुसीबत है, ठीक। तो इस तरीके से, तो इसका इस ये स्टडी करने के लिए दी गई, इसे समझें, इसे परखें, इससे तजुर्बा लें, और उस तजुर्बे के बिना पर आप आगे आप तरक्की करेंगे। कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए, भगवत भक्ति भक्त होने के लिए, भगवत चेतना से समर्पित होने के लिए जिस माहौल में हम रहते हैं, उसी से उसका मदद लेना सबसे आसान है। नहीं तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात, जैसे मिसाल के तौर पर आने वाले हर लोग यहां पर, यहां आने वाले तो चलो दूर की बात है, बाहर भी ऐसे अगर बाहर बात करें तो कुछ लफ्ज जो है तकिया कलाम है, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर, तो ठीक है ना, एक तकिया कलाम है, मुंह माया, उसे पता ही नहीं हो क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हो, मुंह माया, वो क्या होता है मुंह माया, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या तजुर्बा है मुंह माया, माया से तुम्हारा क्या तल्लुक है, तुम्हारे कहां लगते हैं मुंह माया, समझ आ रही है? तो जो चीज का आपको तजुर्बा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी समझ नहीं, समझ क्यों नहीं, क्योंकि उसको लेके आपने कभी घुसे नहीं, कभी उसकी स्टडी नहीं करी, कभी उसका एनालाइज नहीं किया। तो यार मुझे बात बताओ, जिस चीज की आप एक्सपीरियंस आपका नहीं, जिस चीज का अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं, जिस चीज की नॉलेज आपकी नहीं, यार उसकी राय आपकी कैसे हो सकती है, कन्विक्शन आपकी कैसे हो सकती है? फिर जो आप बोलोगे तो घिसी पिटी बातें होंगी, दूसरे के किराए की जबान आप इस्तेमाल कर भी लोगे तो आपका क्या हो रहा है उसमें? अगर यहां पर आप मेरे से, इधर से, इधर से किसी से सुन लेते हैं दुनिया मोह माया है, तो हमारा तजुर्बा है, आपका क्या है, आपका क्या है? अगर वो तजुर्बा आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद बात करें, उसके बाद समझ आएगी। ये रेटोरिक का काम चल रहा है हमारा, रेटोरिक समझते हैं, रेटोरिक का काम चल रहा है, ये दुनिया मोह है, ये है भगवत धाम है, ओ भाई जब तुम यहां रहते हो ये माया लगती नहीं है, ठीक है, लगती नहीं, अच्छा मानते भी नहीं है, फिर तो इतना वो है, कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां आप रहते हो उसकी समझ नहीं, जहां जाना है उसका तो खैर पता ही कोई नहीं, ठीक है, भगवत धाम है भाई, आपको पता है, आप देख के आए हो क्या, बात समझ रही है? तो आपने देखा है कभी चीजों को इस नजरिए से देखा है? तो क्योंकि परख आपकी नहीं है, समझ आपकी नहीं है, तजुर्बा आपका नहीं है, तो प्रैक्टिस भी आपकी नहीं है। रिजल्ट आपका कैसे होगा? इसलिए जरूरी है कि जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसको कनेक्ट करना सीखें। अपने मेरिट पे जितनी भगवान ने अकल दी है, भगवान ने अकल, अच्छा ये भी एक और मजेदार बात अपने ऊपर सुनने को मिलती है कि हमें क्या नहीं करना, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। सुनिए बात, कितने ने सुनी है हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना? ये भागवत हमें यही से पढ़ के बताओ, सुने पढ़ी जा चुकी है, पहले पढ़ी जा चुकी है। क्या भौतिक आध्यात्मिक, बुद्धि तो भौतिक ही होती है। अभी पढ़े हैं, अभी सुने, ये भागवत में दूसरा अध्याय है, श्लोक संख्या 21 का तात्पर्य है, ठीक है? यद्यपि दैत्यों का ज्ञान अत्यंत बड़ा चढ़ा माना जाता है, आप ध्यान से सुने, लेकिन वे यानी वो लोग भगवान की सेवा में सद्बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं। और भाई तुम्हारी बात सुनूं कि ये भगवत की बात सुनूं? ये कह रहे हैं भगवान की सेवा में बुद्धि को इस्तेमाल ना करने का आदमी को राक्षस कहलाते। समझ ली? ये कहते हैं बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, किधर करो फिर, किधर करो फिर? जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, तो फिर वही होगा जो भी हम बात कर रहे थे। दूसरा फिर क्या होगा साथ में? फिर आप फिर जज भी नहीं। अच्छा ये तो दूसरी बीमारी, इससे दूसरी बीमारी निकलती है, क्योंकि जब आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना तो आप तो फिर जज कर नहीं सकते किसी को, तो फिर दूसरी लाइन आ जाती है, हमें किसी को जज नहीं करना। ये मुहावरा किसने सुनाया? इतने यहां बैठे हैं आप में से दीक्षित भक्त हैं, मेरे से सीनियर भी माशाल्लाह यहां बैठे हैं लोग, मेरे बराबर के जूनियर। मैं इतनी बड़ी बात यहां पर बैठ के विरासत में मैं चैलेंज करूं, मुझे एक स्टेटमेंट प्रॉपर किसी भी किताब से दिखाएं जहां पर ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं हमें किसी को जज नहीं करना। एक स्टेटमेंट, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मुझे मालूम है, मुझे इंटरनेट में भी सुन रहे हैं लोग और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और आई विल ओन इट, मुझे एक स्टेटमेंट, मैं कितना बड़ा चैलेंज यहां से बैठ के कर रहा हूं। भागवगीता, भागवतम, चरित्र चेतन, स्मॉल बुक्स, प्रॉपर शिक्षा में लेटर्स, लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक्स, एक स्टेटमेंट मुझे ये सुनाए कोई इंसान का बच्चा आ जाए और मुझे सुनाए कि ये हमें जज नहीं करना। उसके बनस्बत मैं आपको 85 से 86 स्टेटमेंट्स प्रॉपर की वो दे सकता हूं, बता रहे जज करना है, कैसे करना है, और ना करने वाले आदमी को बेवकूफ कहते हैं। फर्स्ट कैंटो भागवतम में बात कर रहे हैं द्रौपदी के इंसिडेंस में, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, वह प्रभात कह रहे हैं ऐसा नहीं छोड़ना होता है। ऐसे कितनी स्टेटमेंट्स है, इजी एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस पत्री के नाम उसमें बता रहे कैसे जज करना है। भागवत गीता में बता रहे 13वां अध्याय 8वें से 12वें श्लोक के अंदर, दिस इज द क्राइटेरिया टू जज, ये कह रहे जज नहीं करना, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना। तो जब आप अपना दिमाग भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो जज करने के तो लायक ही नहीं बचोगे, तो फिर आप क्या बनोगे? फिर आप दौलत छा के चूहे बनोगे, केज करके रखा होगा दिमाग जिसका, तो फिर उससे क्या, फिर आप कोई ओरिजिनल बात सोच नहीं पाओगे, ओरिजिनल बात बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। जब तक वो बात दतियानुसी नहीं होगी, किसी पीटी नहीं होगी, ठीक है ना, रेटोरिकल नहीं होगी, तब तक आपको पसंद नहीं आएगी। और जहां पे आ गया कोई जो आपको ओरिजिनल बात बताए, सोचे, आपको सोचने में मजबूर करे, वो तो फिर आपको पागल ही लगेगा। तो यूं मामला यूं है, भागवतम ये चीज ये जो है ये देखिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। प्रिंसिपल हर किसी के लिए बराबर है, प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग पर्सनल है, सिद्धांत की समझ वो व्यक्तिगत है, वो सार्वजनिक नहीं है, सिद्धांत सार्वजनिक है। समझ आ रही है कि भाई जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी प्यास बुझाती है, ये सिद्धांत है, ठीक है ना? पर पानी कैसे प्यास बुझाती है वो अपनी समझ है। कि कई बार क्या कहते हैं, अगर गला खराब हो या खाना ज्यादा खा लिया हो जरूरत से, तो ठंडा पानी प्यास नहीं बुझाती, गर्म पानी प्यास बुझाती है, ठंडा पानी मरवा देती है। ये समझ अपने तजुर्बे से आया है। ऐसी दूसरे मामला आते हैं, भगवान कर्ण कर्ण में ये सिद्धांत सबके लिए, आपकी समझ आपकी हिसाब से जितना आप बड़े हैं उतनी ही समझ आपकी होगी, और उतना ही ओम करें उससे ज्यादा बोलने वाले को बड़े बोल बोलने वाला कहते हैं। वो बात कर रहा है जिसका उसको कोई खुद का तजुर्बा नहीं है, तो फंस भी जाएगा जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि जब वो बियॉन्ड रियलाइजेशन एक बात बोलेगा तो वो फंस जाएगा, उसका जब सवाल पूछेगा तो उसका जवाब नहीं होता, वो क्या करेगा, तो चीट करेगा, घुमाएगा, झूठ बोलेगा, नहीं ये ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर तो शीश में उतर गई बात तो ठीक ठीक है, वरना एजिटेट हो जाएगा। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की अपनी होनी जरूरी। दुनिया है भाई, ये एंटायर पर्पज है, ये नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवोशन ना पढ़ सकते हैं, ये पात्रता चैप्टर तो सही चौथा चैप्टर है, ये तो पूरा पढ़ सकते हैं। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, और पूरा है इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करी जाती है, पूरी दुनिया कैसे इस्तेमाल करी जाती है। जब आपको दुनिया को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो दुनिया से भागने के अलावा आपके पास चारा ही होगा, फिर यही होगा। तो यार जो आदमी दुनिया में भगोड़ा है तो ऊपर क्या तीर मार लेगा, बात समझ आ रही है? ये यूं है, ये पूरी दुनिया भगवान ने भक्तों के इस्तेमाल के लिए बनाई है, भगवान की सेवा के लिए, ये मेन है। अब ये भी रेटोरिकल है, जब ये हमने लाइव सुन ली ये भी 50 बार घिसी पिटी रहने, आपका क्या तजुर्बा है? ये जरूरी है, आपने दुनिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया कभी आज तक? अगर तो किया है तो इस लफ्ज का मोल आपको समझ आएगा, नहीं तो क्या, मैं इस बातें सुन के चले गए, सुना भी देंगे दूसरे किसी को तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको जितना फर्क पड़ा उतना ही पड़ेगा दूसरे को। ये लाइन, ये घिसी पिटी लाइन जो सुन के या तो आपके सर पे सींग निकल आए, पूंछ निकल आए, पर निकल आए आपके, तो नहीं निकले तो दूसरे के भी नहीं निकलेंगे। इसको समझने के लिए इसको इस्तेमाल करें, डरे नहीं। और ये जब आप इस्कॉन में मंदिर में आते हैं या किसी अपने किसी क्लास में जाते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो ये दीवार सबसे कम वक्त, ये भाई इसको ये मैं कैसे लगाऊं, डरे ना उसमें, और ये सीखना इसको कैसे लगाया जाए। और जब आप सीख रहे होते हैं तो आप गलतियां भी करते हैं, डरे ना गलतियां करने से, सीखने की राह में आप गलतियां कर रहे हैं तो वो आपकी वो सीख आपका तजुर्बा बनेगा, पहला ही तीर निशाने में नहीं जाएगा। इस डर से नहीं हो कैसे, कोई पूछे ना भाई कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है, समझ आ रही बात? भाई आप में से सब लोग गाड़ियां आते होंगे ना, ज्यादातर तो पैदल तो बहुत कम लोग आए होंगे, तो भाई कैसे आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं भगवान के समय पूछे, आप दक्षिण अनुसार जवाब हुआ था, भक्त बैठते हैं आपके रोज, भक्त बैठते हैं आप रोज मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी करते हो, जैसे ऑटो लगती है आ जाओ सवारी लेने के लिए, भक्त को बैठा के गाड़ी शुद्ध करना, बाकी दिन कैसे शुद्ध होती है, समझ आ रही है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आप दुनिया में बैठे हो रोज, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जिस ऑफिस में जाते हो, उस ऑफिस में माशाल्लाह कई केसेस में तो आपकी दुकान अपनी है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो भगवान की सेवा में? दुनिया छोड़े आप, जो आपके पल्ले में है, समझ आ रही है, उसकी क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार आपका है। दुनिया चलो आपने नहीं बनाई, दुनिया के अंदर एक मकान आपने, एक स्टूपिड सा हाउस आपने बनाया है, वो उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया है। जब भक्त आएंगे, कितने दिन आते भक्त आपके घर में, जहां से जन्मदिन पे आ जाते और बाकी 364 दिन। तो ये है, इसको लर्न करना, इसको लर्न करना कि अगर मैं भी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे ये घर चाहिए। आई एम ऑल्सो डिवोटी, वो घर इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर फिर मैं क्या, ऐसे हर मामला, हर मामला जब बोलते भक्तों अपना क्या करना चाहिए, वो क्या, कर्म फल, कर्म करते हैं कि कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। कर्म के फल को अर्पित करने का क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग कर्म के फल का, क्या करते हैं अक्सर, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या होता है कर्म का फल? एक तो वो होता है जो भुगतने वाले, और कौन सा होता है? हाँ, तो उसका फल, फल क्या होता है उसका? सैलरी, सैलरी। तो सैलरी भगवान को दे दी, हो गया। वो भाई वो कर्म नहीं अर्पित हो सकता, कर्म अर्पित करने के लिए किसी ने मना किया? उसे अर्पित कर दो ना। कैसे अर्पित करें? अभी पैसा तो जेब में गिन के ऐसे करके टीआर कटवा के अर्पित हो जाती है। अब कर्म को कैसे अर्पित करूं? उसको बोतल में बंद करूं, शीशे में उतारू, क्या करूं उसको, कैसे अर्पित करूं? ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उधर जाओ और बोलो कि ये मैं काम करने वाला हूं। और कि कर्म के अर्पण होता है, ये काम शास्त्रिक है क्या? भगवान ने डूज एंड डोंट पहले बताए हुए, अगर वो उसके तहत आप करते हो, कर्म अर्पित है, अर्पित है। मेरा जुए का कारोबार है, मेरा सट्टा है, मेरा क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, कसाई कारखाना मैंने खोला हुआ है, वो आप अर्पित कर ही नहीं सकते, मना ही है पहले से। जब भाई अर्जुन कर रहा था खड़े होकर, वो कौन सा कर्म का अर्पित कर रहा था? उसके कर्म का कौन सा फल था? वो लाशे। अर्जुन ने भगवान को क्या अर्पित किया? वो जो लाशे बिछा रखी थी उसने, वो, अरे वो जो वो कर्म कर रहा था भगवान के आगे से करने वाले काम का कर्म अर्पित माना जाता। ये है बेसिक फंडे। इनको लेके इतने अगर दिमाग के अंदर एक क्लाउड एक है, तो फिर रोशनी कोई आएगी नहीं। फिर ये मामले पहले अपने जमीनी चीजों पे आए करें। ये दिस इज क्रिएशन ऑफ क्रिएशन टू बी यूटिलाइज द सर्विस ऑफ कृष्ण। खत्म। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी अभी ये जो कर रहे हैं, ये इसे सबसे बड़ी श्लोक पढ़ रहे, जिसमें क्या देखा पहले कि वो कमल था, तो उन्होंने पहले उस पूरे कमल को नापा उसने। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा क्षेत्र है वो तो पता हो, मैंने मुझे पहले करना क्या उसका। मैं ऑफिस जाता हूं, बिजनेस करता हूं, घर पे हूं, यार मेरे को बात बताओ, जब मैं घर पे कपड़े धो रहा होता हूं वो कैसे अर्पित होती है? खाना तो समझ आ गई सबको अर्पित करना, मकान में जब डबल बेड आता है नया, वो कैसे अर्पित होता है? वो तो ऑल्टर में नहीं जा सकता तुलसी चढ़ा के। हमारे को अंडरस्टैंडिंग है ना, हम टनल विजन, नाक से ज्यादा आगे देख नहीं सकते। तो वो इस तरीके से, तो वो भाई वो पर्पस जिसके लिए लाया गया है, इटसेल्फ ऑफर्स इट। पर्पस डिसाइड करने के बाद जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वो अर्पित होती है, कर करा के फिर नहीं अर्पित होती। पहले जो करना था मन की कर ली, अब क्या करें, अब ले तुम सर पे मर दिया के भगवान के पाखंड के नाम पर। सिस्टम उल्टा है। पहले आप अपना पर्पस मैंडेट कराते भगवान से। कैसे मैंडेट कराते? भगवान से वो सर्टिफिकेट मिलता है आपको। मैंडेट यहां से होता है, अगर शास्त्रों में गुरु से साधु से बताई गई कि वो चिता ये चीज ऐसी होती, हो गया अर्पित। ये चीज जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप टैली कर रहे हैं, इस एस टू एस ऑफरिंग, ऐसे ऑफरिंग होती है। टैली कराई हुई चीज ऑफर्ड होती है, टैली ना कराई हुई चीज अनऑफर्ड होती है। तो अब वो इमरजेंसी मेजर हो सकता है कि चलो जी भूल गए या पता नहीं था कि कैसे ऑफर करनी थी, तो फिर आपने चलो बाद में कर दी, बट दैट इज नॉट एज गुड एज जो आपने पहले करी। इस तरीके से चीज ऑफर होती है यार। कपड़े पहने हुए हमें सर किसी ने, यार ये कैसा ऑफर होता है भगवान को, क्या करें ये कपड़े पहने भगवान को पहना के फिर निकाल के भाग साहब पहने, हमें तो फिट नहीं आएगी इनकी, नहीं हमारी आएगी। तो कोई कह रहा ना, कोई मतलब कोई इंसान बनो ना यार, दिमाग भी कैसे इस्तेमाल हो, ये चीजें कैसे भगवान पर पद होती है, जिनकी जरूरत नहीं है ऑफर करने की। अगर नहीं यार जरूरत तो बड़ी सारी और चीजों की जरूरत नहीं, फिर तो क्या है ठीक। तो ये बेसिक है कि कैसे दुनिया ऑफर होती है भगवान को, कैसे आप लगा सकते हो, तब आप निकलोगे। भाई आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपने ये इस जहां पर आप हैं वहां पर आपने व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड, आपके होने या ना होने से दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप क्या होते, कीड़े मकोड़े वाली हालत। फर्क पड़ता है, एक भी होने के रहने लाने से, ये आगे आएगा अगले चैप्टर में। वो कहते हैं एक प्रॉपर पर्पट में कि एक भक्त एक, एक 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 देश में पैदा हो जाए वो देश का उद्धार होता है। कैसे, अगर वो वही काम कर रहा हो तो, क्योंकि उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो भक्त पैदा हो तो वो तो लगाएगा। वो कैसा भक्त है कि वो जहां पैदा हुआ है उसकी किसी भी चीज का उसका कोई यूटिलाइजेशन भगवान के लिए नहीं है। ये बेसिक है युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, यूजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। जैसे आगे भी अगर आप देखेंगे, इससे एक और चीज होती है फिर उसके बाद कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति से हमारा क्या, क्यों भक्ति करते हैं, गुणों का विकास होगा, है ना, यही है ना। तो अब गुणों का विकास होता है, जरूरी नहीं है गुण हो अंदर, ठीक है ना। यानी कि गुण अगर वो ढके हुए हैं, बीज अवस्था में है, वो इन एक्टिविटीज से वो निकल के आती है। ये बकवास है, कई बार जो लोग कहते हैं ना कि आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, भाई वो कलयुग का क्या एटीट्यूड है, भागवत तो बता रही है या तो तुम शुद्ध गोस्वामी से आगे निकल गए हो। वो कह रही है मन सुमन मते हो मध्य मन भाग होते, ये औकात है उसकी, और दूसरी औकात है कलयुग दोष से निदेह राजन, दोषों के समंदर में गोते लगा के एटीट्यूड ढूंढ रहे हो, क्योंकि होश है क्या है कलयुग के आदमी का, क्या एटीट्यूड है, क्या क्वालिटीज है उसके अंदर। एक चीज देखी जाएगी, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का पहला और आखिरी एटीट्यूड कीर्तन या सदा आ रही है, बाकी किधर से ले आए। पहला और आखिरी एटीट्यूड स्पिरिचुअल लाइफ गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी एंटायर भक्ति रसामृत सिंधु कैनन पूरा गौड़ीय वैष्णव छठ संदर्भ एक प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमता है। स्मर्तम सतत स्मर्तम सतत विष्णु विस्मर्तम जात चित ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, दिस इज द ओनली एटीट्यूड टू डेवलप। बाकी सारे एटीट्यूड का की औकात भी बताइए उसकी अगले लाइन में, सर्व विधि निषेध एव अभी किंग कर नौकर है, ह्यूमिलिटी टॉलरेंस क्रिटिसिस्म क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी फॉर इंस्टेंस नौकर है इसकी। अगर ये एटीट्यूड जिसके कीर्तन ये सदा आ रही इज द ओनली एटीट्यूड, बाकी जैसा मर्जी है आदमी, ये देखा जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीजें तब्दील होंगी। किसी आदमी के अंदर जो जो आप बाहर अंदर भी कहते कितने लोग हैं हमारे यहां पर, हमें से बहुत ही कम लोग शायद ऐसा बोलेंगे कि हम हम्बल बन चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी है कि कई सारे लोग बाहर बहुत हम्बल लोग मिलेंगे आपको, तमीजदार तहजीब से बात करने वाले, कल्चर मिलेगी। तो है उनके पास सब क्वालिटीज है, टॉलरेंस भी मिलेगी आपको, एबिलिटी मिलेगी। टॉलरेंस यार ये हमारे जेबों में नोटें होती है गांधी जी, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं थी। आप करके दिखा दे उतने बराबर, आप करके दिखा देना, मजाक पर उड़ा लेते ये एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गल, आप ऐसे कितने ने किया, करके दिखाए जरा पहले ठीक। तो ऐसे ऐसी क्वालिटीज एग्जिबिट करने वाले बहुत लोग आए हैं, पर भगवान जो कसौटी देखते हैं वो ये देखते हैं कितनी सदारी है, जिन्हें पल्ले में कहते हैं स्मरण सततम विष्णु था कि ऑलवेज रिमेंबर श्री कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण था कि नहीं। वो सारी क्वालिटीज जिनके लिए आप भाग रहे हैं, जो आपके आइडियल्स हैं, आपको मरवा देगी अगर इसका सेंटर ये नहीं है तो। ये सेम क्वालिटीज एग्जाम्पल यही है, अगर मैं गांधी जी का एग्जाम्पल लो तो यही ह्यूमिलिटी टॉलरेंस की क्वालिटी ने मरवा दिया उसको सामने। ये सारी क्वालिटीज भगवान से अगर आपके पास है तो भगवान से जुड़े, नहीं है तो भगवान से जुड़े। क्वालिटीज छोटे मोटे में हो जाएंगी, वो इसका नतीजा है, वो रिजल्ट है कीर्तन या सदाहरि का। आपको रिजल्ट पहले ही चाहिए, तब अगर कीर्तन रहने की जरूरत होती नहीं। फिर तो अगर ये सारी क्वालिटीज भक्ति करने से डेवलप होती है और आपके पास भगवान की दया से पहले से ही है, तो आप तो फिर क्या पागल हो जब कर रहे हो। समझ आ रही है, इसका ऑर्डर है, एटीट्यूड डेवलप किया जाता है और वो डेवलप होता है जब आप अभिधेय पे लगते हैं, स्किल्स पे लगते हैं, प्रोसेस पे, प्रैक्टिस पे लगते हैं। और मैं तो बहुत कम सुनता हूं, बहुत कम, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं। आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग भी आते हैं, मैं तो बहुत कम सुनता हूं कपड़े कैसे पहनने हैं, मुंह कैसे धोना है, सुबह उठने के बाद क्या करना है, ठीक है, माला कैसे पकड़नी है, जब धाम जाके वहां पे क्या हरकत करनी है, ये मैं तो नहीं सुनता। मैं तो कोई बहुत ही कम किसी को सुनता हूं इन इन बारे में बात करता हूं। बंदे को देखे सामने तो उसको कैसे रिसीव किया जाता है, प्रसाद कैसे बांटना है, मैं तो नहीं देखता, बहुत कम देखता हूं। तो अगर आपको जो एक्टिविटीज आपने करनी है, जानकारी कोई नहीं है, तो रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे। छोटी छोटी चीज है ना, ई गरुड़ जी यहां बैठे, इनके साथ क्या करना है, इनके साथ कैसे पेश आना है, ये पीछे बैठे इनका क्या करना है, इनकी क्या रिलेवेंस है। या जो आप नीचे यहां लगे होते हैं, ये बैठे हुए यहां पर, ये गुरु परंपरा तुम्हारे कहां लगते भाई, तो कभी ये है ना कि हमारे कुछ लगते हो तो मैं पता हो इनका। तो ये प्रोसेस है, भक्ति का मतलब है प्रोसेस ग्लोरीफाइड है, रिजल्ट तो ग्लोरीफाइड है ही। रिजल्ट को कोई हमारे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है ग्लोरीफाई करने के लिए कि भक्त का ये हो गया, फला हो गया, और होता ही ऐसी है। आप देखे कई बार ये कॉन्ट्रडिक्शन, कई बार आप इसको देखा कि नहीं, कई बार मैं देखा, अभी वृंदावन में गए थे, वहां पर यात्रा थी, लेक्चर में यहां से बंदा व्यास आसन से या आपका भक्त परीक्षा हो या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां से वो बोल रहा होगा जैसे प्रहलाद महाराज का, ठीक है, अभी प्रहलाद महाराज आए, ठीक है, प्रहलाद महाराज के सर पे जो है भगवान ने हाथ रखा, हरी वो भाई वो हाथ रखने के बीच में हाथ रखवाया कैसे, उस पर हरी बोल नहीं निकलता क्योंकि वो मेहनत है, मशक्कत है, वो प्रोसेस को कौन ग्लोरीफाई करेगा। आपके मेरे के सर पे क्यों नहीं रखा, बिकॉज वो प्रोसेस है वहां पर, उसके बीच वो बताया के बीच में ध्रुव महाराज जी जो है वो वैकुंठ का विमान आया, उसी शरीर में चलेगा, सारे हरिबोल कर रहे, वो तो कहीं हरिबोल नहीं करते जब 6 महीने भैया वो बिना पानी के और एक टांग पे खड़े थे और पतियां खा रहे थे, तब किधर किधर चला गया था हरिबोल उस वक्त। हरिबोल वहां कर रहे हैं जब आप किसी के मेहनत का अप्रिशिएट, अरे खुद नहीं कर सकते, दूसरे की मेहनत को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं फिर। ये जरूरी है कि जब वहां पर वो भाग एज ए साधक स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज ग्लोरीफाइड, एंड रिजल्ट तो ग्लोरीफाइड है ही, उसमें क्या है। भक्ति करेगा तो किसी 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 कंपक धंधे को भी बताएंगे कोई भगवत धाम जाएगा उसमें क्या ग्लोरीफाई करना, वो तो ग्लोरीफाइड है ऑटोमेटिकली अपने आप में। ग्लोरीफाई प्रोसेस को किया जाता है, उस बंदे को किया जाता है जब वो धक्के खा रहा था, चक्कर पड़ रहे थे उसे, वो ग्लोरीफाइड है स्टेज साधन की, स्ट्रगल का फेस, उस स्ट्रगल से इंस्पिरेशन मिलती है। नहीं तो यही होता है, जब आप एंड रिजल्ट को फोकस करके देखते उसको ग्लोरीफाई करते रहे तो फिर आपको उससे एक स्ट्रगलिंग साधक के दिमाग में यही आता है इसको मिल गया और मेरे को नहीं मिला, उसमें आपको भगवान की नाइंसाफी दिखेगी फिर, क्योंकि उसमें और आप में डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस था उसको आपने कंसिडर नहीं किया, डिफरेंस था उसका एफर्ट। What is the difference between Prahlad Maharaj and any of us? अब एक ये और चीज आ जाती है, प्रहलाद महाराज है किसी का नाम ले लो वो तो नित्य सिद्ध है, कोई साधन सिद्ध भी था? कोई हमारे तुम्हारे जैसा आम आदमी भी कहीं गया नहीं गया ऊपर? तो क्यों पढ़ रहे हो ये चीजें? ये साधन सिद्ध है या आगे पीछे, इज ए मिक्स ऑफ साधन सिद्ध नित्य सिद्ध, लाइक नारद मुनि एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद आगे। एक आम आदमी भागवतम ये बताने के लिए नहीं है जो नित्य सिद्ध है वो वापस कैसे चला गया, उसे तो सवाल मुझे आया ही नहीं था। ये भागवतम ये बताने के लिए कि मेरा तुम्हारे जैसा एक आम आदमी ये पार्टी बनाए बैठे हैं, आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी कैसे निकले यहां से और कैसे निकला है, इससे पहले बहुत निकले और भगवान ही बता रहे हैं भागवत में, बहुओं में, व्हाट इज द वर्स सेकंड चैप्टर 52 भगवान कह रहे बहुओं में दोस्तों मुझे बहुत गए हैं, ये मायूसी की ना उम्मीद की बातें फैलाना कि वो बहुत हजारों लाखों में एक जाता है, वो साधक सारे जाते हैं अगर साधना करे तो, कीड़े मकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं वहां पर, भक्तों की बात कर रहे हैं, ये बहुत गए हैं भाव में तब तक सकुंसक, बहुत इंसान पुंसक मतलब इंसान के बच्चे, ये बहुत सारे गए आप भी जाओ, ये प्रोसेस फॉलो करो, उनको देखो उन्होंने जो जो उन्होंने जिन चीजों का सामना किया। जब प्रहलाद महाराज को ये पिछले चैप्टर में आ रहा था, जब प्रहलाद महाराज को हाथी के पैर पहले रौन रहे थे और वो तो खाड़ियों से नीचे फेंक रहे थे, तब तो कोई भी हरी बोल करता, वो उसके साधना का हिस्सा तो टेस्ट हो रहा था उसका। जब उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं तो हिम्मत आती है, तब शेर का कलेजा बनता है। ये और अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की इंतहा जैसे होती है ना हमारे यहां पर, तो ये देखी जाती है बात होना चाहिए मीक, ओ भैया भक्त मीक भक्तों के साथ होता है, कलेजा होता है शेर का होता है, गीदड़ का नहीं होता, गीदड़ के कलेजे वाले आदमी को ही हम्बल समझे बैठे होते हैं, शेर का कलेजा होता है कि जबानी तकलीफ होते हुए आपके भगवान नरसिंहदेव लायन, ठीक है आपके गुरु भक्ति सुधार लाइन गुरु, पर आप क्या हो? प्रभुपाद स्पीच लाइक लायन, तो भाई ये लायन के घर पे जो है चूजे कहां से आ गए? भक्तों का जो एटीट्यूड है मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं वो एटीट्यूड जो उसका है वो इस तरीके से दिले दिले का मतलब क्या है? मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार, भगोड़ा नहीं, ये ह्यूमिलिटी के चादर में हम अपनी कमजोरी अपना डरपोकपना इसे छुपाते, कोई चैलेंज नहीं ले सकते इस तरीके से, ये नहीं तो फिर तब भक्ति का स्वाद ही तब आता है। आपको चाहिए ना भाई, देखो भक्ति करने के बाद तो जो मिलेगा सो मिलेगा, वो तो अपने हमने आपने नहीं देखा ना अभी, तो जो मिल रहा है वो तो ले लो, जो मिल रहा है उसे यार वो तो उसमें जो स्वाद मिल रहा है उसे ले लो, तो ये स्ट्रगल का ही जो गए हम ऐसे यहाँ पर कभी किसी जमाने में, अब तो पता नहीं जाते नहीं जाते, कोई जिम गया तो भाई वहां जिम में क्या क्या हो रहा होता है, आपकी पैर दबा रहे होते हैं, तिमारदारी होती है, मेहनत कराते हैं, और वो जो मेहनत करने वाला मेहनती आदमी उसको उस मेहनत में नशा आता है, और पहले 50 रुपए का भत्ता डलवाता है, फिर डाल और डाल 70 डाल 80 डाल 100 डाल 125 डाल, उसको उसका नशा आता है, क्योंकि मेहनत करी है, उसके बाद उसी टाइप से बनती है, प्रोसेस फॉलो करने के बाद, प्रोसेस को लगाने के बाद, रोजमर्रा की जिंदगी में उस प्रोसेस का, भाई आपका काम क्या भक्ति का, लेना देना, जब आपके किसी भी एस्पेक्ट में वो भक्ति कहीं लगी नहीं सकती, हर चीज आपकी मटेरियल है, हर चीज मटेरियल है, तो फिर आप किसी टापू में जाके बैठ जाए, तो इस तरीके से तो ये बड़ा रिग्रेसिव एटीट्यूड है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, प्रॉपर रूप को समझो, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, हर वो चीज जो भगवान की बनाई हुई है भगवान की सेवा में लग सकती है, वो चीजें किसी इंसान के बच्चे के हाथ लग जाए ना वो लगा दे, उस तरीके से ये सीखना है कैसे कौन सी चीज लग सकती है, और करते वक्त 2-4 गलतियां होंगी, ठीक है, वो ट्रेनिंग का पार्ट, किसी के संरक्षण में हो तो वो यही बताएगा, अच्छा चलो ये करा, इसको कैसे लगाया, ये कैसे लगाया, कॉन्टैक्ट्स कैसे लगाए, फाइनेंस कैसे लगाया, अपने आप को कैसे लगाया, रिश्तेदारों को कैसे लगाया, घर कैसे लगाया, गाड़ी कैसे लगाई, सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट कैसे लगाया, हर चीज, सब चीज लग सकती है, और लगानी चाहिए, ये अब नहीं लगाएंगे वही जो अभी पढ़ा था वो वैसी है, बुद्धि नहीं लगानी, ये भी नहीं लगाना, वो भी नहीं लगाना, तो फिर डीमन बनने के लिए, असुर बनने के लिए हम खुद ही काफी है अपने आप के लिए, तो इस नजरिए से चीजों को देखिए, तब क्रिएशन की ये लीला बताई जाती है, कि अगर आपको उसके बेसिक्स नट्स एंड बोल्ट्स मालूम है कि क्रिएशन कैसे हुई है, तो आप उसको मैनुअल कर सकते हैं, तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए, मिसयूज के लिए नहीं, इस्तेमाल में, और यही एक कनिष्क को मध्यम बनाता है, ये राज की बात है, कनिष्क और मध्यम के बीच में फर्क ही होता है, वो सीख चुका होता है और ये नहीं सीखा होता, और उस दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो सीखने वाला ब्रिज है, कि जब हम ये सीखते हैं हाउ टू यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्ण डिवोटीज, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उस समय तो काफी ऊपर हो चुका है, ये समाप्त करेंगे, किसी को कोई प्रश्न तो बताए, प्रश्न एक प्रश्न ले सकते, हाँ ये तो एग्जैक्टली वही बात सारी हुई, अब बच्चा सवाल है कि अंडरस्टैंडिंग चेक कराने के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपकी है, देयर इज प्रोग्रेस, यानी आप उसकी समझ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप रेटोरिक बोलते हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है, वो किराए की है, बोरो की भी है ना, जैसे रोजमर्रा की जो चीजें जैसे हम बोलते हैं ना, ये माया में चला गया, ठीक है, अच्छा एक और है, ऐसे आपको फेथ नहीं है, भाई आप क्यों सर्टिफिकेट देते फिर रहे हो, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है किसी को, उसको फेथ है कि नहीं, जो ऐसा है ये चीज किस तरीके की चीज सुनी हुई है, उसका कोई तजुर्बा नहीं है उसके अंदर, फेथ कैसे बनता है, किसे फेथ कहते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग, तब आप वो पूछते हैं कि प्रभु जी इसको फेथ कहते हैं क्या, ये फेथ से कितना पास है, नजदीक है कि दूर है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी, तब प्रभु जी इस सिलसिले को फेथ कहा जाएगा, कि मैंने एक बंदे को देखा इस तरीके से, उसने भगवान के सामने ऐसा किया, इसको फेथ कहा जाएगा, और उस दिन आप उस वक्त आप ही वहां पर थे, मंदिर खाली था, किसी और ने देखा ही नहीं, उसे मंत्र को नहीं पता कि वो फेथ का हिस्सा है कि नहीं, बाकी किसी ने मंत्र के बाद कोई चीज देखी किसी बात को करते हुए, और जी इसको फेथ कैसे कहा जाए, वो उसका अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग कैसे, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन इंडिविजुअल होती है, ये ऐसा नहीं है, ये बात समझे इसको, देखें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हैं, कोई 5 साल पुराना है, कोई 7 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, यही है ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पता कैसी है, जो मैंने बात करके लोगों से देखी है, अगर कोई 35 साल पुराना है, मिसाल के तौर पर जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे नहीं है यहाँ पर, अगर मान लीजिए बाकी माधुर गुण महाराज यहाँ पर है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पता कैसी है कि जो क्योंकि उनको 40 साल हो गए हैं, तो जो 40 साल वाला बंदा है उसके पास ये 10 साल 5 साल 15 साल सबके एक्सपीरियंस होंगे रियलाइजेशन होगी। ये गलत है, रियलाइजेशन इंडिविजुअल है। और इसका सबूत ये है, ये जो हम रोज पढ़ते हैं, ये क्या है, ये भक्ति विधान पर्पर्स है। ये पर्पर्स क्या रूप गोस्वामी के पर्पर्स जैसे हैं? नहीं है। ये भक्ति विधान स्वामी बाबा के पर्पर्स है, ये उनकी रियलाइजेशन है। विश्वनाथ चतुर्थीपाद की कमेंट्री पढ़ते हैं, उनकी रियलाइजेशन है। ये कमेंट्रीज अकेले लिखी अलग लिखी क्यों जाती है? वो उनकी रियलाइजेशन है, ये इनकी रियलाइजेशन है। बेस क्या है? प्रिंसिपल सबके बराबर, रियलाइजेशन डिफरेंट। जब हम चार आचार्यों की कमेंट्री पढ़ते हैं, वो चारों में चार अलग अलग बातें क्यों निकलती हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो पहले के जो 3 आचार्य तो बेवकूफ थे, उनको नहीं पता था जो चौथे ने लिखा है, ये ज्यादा समझदार है। इसका ये मतलब है, रियलाइजेशन पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, पेटेंट नहीं है कि इस दर से निकलने वाले हर आदमी को जो है यही सारी चीजें, और उसको पता नहीं, पता नहीं, पता उससे उसका भगवत प्रेम कम नहीं हो जाता, जो भगवान के साथ उसका संबंध जो है वो कमजोर नहीं हो जाता। इंडिविजुअल रियलाइजेशन। आप बोले यही से अभी पीपीटी से लिख निकाले, अंदर जाए कभी क्लास के बाद ही जाके देख ले, मांगे इनसे ब्रह्म संहिता, वो तो कृष्णा सत्र ठाकुर की रेडीमेड मिल जाएगी ना, उसे खोले रखे, मुझे उसमें से कोई 4 लाइन, मैं इतना बड़ा मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई चार लाइन हूबहू जो प्रभुपाद किसी किताब में मिल जाए तो मुझे बता देना, और कोई एक प्रिंसिपल ऐसा जो प्रभुपाद और इनकी किताब में डिफरेंट मिल जाए बता देना मुझे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी है, जबान आपकी है, इसलिए एक्सपीरियंस आपका है, इसीलिए परपट आपका है। इस तरीके से वो कैसे बनता है? जो परपट प्रभुपाद ने इस टाइम दिया, वो परपट आपको ये उल्टा क्यों नहीं पूछता कि भाई वो परपट पहले विश्वनाथ चतुर्थीपाद ने क्यों नहीं दे दिया पहले से? वो अकॉर्डिंग टू हिज टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस, वो जिस दुनिया में जीते थे, जिस दुनिया से उनका ताल्लुक था, उसके कंटेक्स्ट में है, ये इसके कंटेक्स्ट में है। इस तरीके से काम आती है। इटर्नल क्या होता है? इटर्नल प्रिंसिपल होता है, डिटेल इटर्नल नहीं होता, डिटेल चेंज होती है। और भाई पहले था, जब प्रभुपाद की किताबों में जब आप पढ़ते हो, प्रभुपाद की किताबों में आप क्या 4 प्रिंसिपल्स में क्या मिलता है आपको? और वो कहते हैं भाई मैगजीन नहीं पढ़नी उल्टी सीधी जिसमें गंदगी होती है, ठीक है, वो नहीं पढ़नी, या क्या कहते हैं रेडियो टीवी ना करें, इंटरनेट तो नहीं है उसके अंदर, उसको किसमें शामिल करेंगे फिर? इंटरनेट में फिर आप अलाउ करते इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देखना, बोले वो तो प्रभुपाद ने मना नहीं करिए, हम तो प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, तो उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? ये इस तरीके से है मामला, वो डिटेल है, प्रिंसिपल समझे, प्रिंसिपल है मोर देन सक्सेस। अब उसको कैसे अप्लाई होगा? टाइम टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस बदलेगी, कैसे उसको वो करेंगे? प्रभुपाद कहते हैं हर चीज ऐसी है, प्रभुपाद कहते हैं कि क्या कहते हैं जुआरी होना चाहिए, और क्या कहते हैं दो गैम्बलिंग, तो आपको गैम्बलिंग का सड़क पर बैठ के कोई होती पति खेल कर देखा किसी को, फिर तो गैम्बलिंग नहीं होती है। F1 इतना बड़ा खोल के रखा है, गैम्बलिंग का डर, वो किसी कमर ने निकाल के दिखा दिया प्रभुपाद की किसी परपट में से, तो क्या आप उसको ना इंक्लूड करें? क्या प्रभुपाद नहीं कह रहे थे कि इसका मतलब वो भी इसके अंदर आता है? ये कौन समझेगा? ये है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल है, प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, वो अप्लाई करने के बाद ही समझ पैदा होगी कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये आगे लेके जाएगा, ये पीछे घसीटेगा, इस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, विराम देते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रार्थना श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्तवृंद की, काय गोत्र मनंदे।